Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
ये बात उस परमात्मा को मालूम है, इसीलिए बाहर आने से पहले मां के स्तन में दूध तैयार करता है. जन्म से पहले रेडीमेड दूध तैयार कर रहा है. कौन कर रहा है? वो वही दाल भात तरकारी सब कुछ खाती है मां. अब क्यों नहीं होता है दूध? हमेशा क्यों नहीं होता है? उसी समय क्यों होता है? और दो चार साल के बाद जब वो बालक अन्न खाने लग जाता है और अन्न से अपने पेट को भर सकता है और शरीर की रक्षा कर सकता है, ये जब परमात्मा को विश्वास होता है तो उस सिस्टम को स्वयं हटा देता है और दूध बनना बंद हो जाता है अपने आप. नोचित अर्भ का जीवनाय जननी, वो छोटे बालक के जीवन की रक्षा के लिए जननी स्तन्यम कथम निश्चरित. यदि वो विश्वंबर न होता तो इस व्यवस्था को करता कौन? किसी वैज्ञानिक के पास ये क्षमता है? हैं? नहीं है. किसी के पास ये क्षमता नहीं है. वही है ऐसा अंदर बैठा बैठे बैठे उस हरे घास में से सफेद दूध बना रहा है, लाल रक्त बना रहा है, लाल रक्त बनाकर उसकी मां की रक्षा कर रहा है, सफेद दूध बनाकर बच्चे की रक्षा कर रहा है. यदि वह अंदर बैठकर ही सारी व्यवस्था न करता तो ये कैसे चलता? वही चलाने वाला है. इत्यालोच्य मुहूर् मुहूर् यदुपते, इस तरह जब हम विचार करते हैं तो निश्चय होता है कि हम बिना मतलब चिंता में परेशान होते हैं. लक्ष्मीस्पते केवलम त्वत्पादाम्बुज सेवने ही सततम कालो मया नीयते. तब वो प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, हे लक्ष्मीपति, हे विश्वंभर, अब मेरा शेष जीवन आपकी ही स्तुति, आपकी ही सेवा, आपके ही चिंतन, आपके ही ध्यान में मेरा समय व्यतीत होगा. संसार के चिंतन नहीं करूंगा. जब मधुसूदन सरस्वती जी ने ये बात कही तो उनके माता पिता संन्यास होने की बात कही तो माता पिता बड़े दुखी हुए. बेटा तुम चले जाओगे सन्यासी होकर तो हमारी रक्षा कौन करेगा? तो उन्होंने माता पिता को जवाब दिया, ये न शुक्ल कृतो हंस सुकाश्च हरिति कृत मयूरा चित्रितम ये न सते वृत्तिम विधास्यति. जिसने हंस को बिल्कुल सफेद बनाया है, जिसने तोते को बिल्कुल हरा बनाया है और जिसने काक को बिल्कुल काला बनाया है और जिसने मयूर को सप्त रंगों से रंग दिया है, ये सब कौन किया, किसने किया? जिसने ये सब किया है वही तुम्हारी परवरिश करेगा, वही सते वृत्ति विदास्यति. तुम चिंता ही मत करो, तुम्हारी योगक्षेम की जिम्मा तो उसने ले रखा है. उसके भरोसे में रहो, उसका भजन करो, इसका स्मरण करो, उसके चिंतन करो. उसने प्रतिज्ञा कर रखी है भाई, योगक्षेम वहाम्यम एवं सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम. इस तरह मेरे जो भजन करने वाला है उसकी योगक्षेम का मैं वहन करता हूं. योगक्षेम का अर्थ होता है जितनी से गुजारा हो उसको योगक्षेम कहते हैं. और तुम्हारी जो फरमाइश हो उसको पूरा करना उसके काम नहीं है, उसके जिम्मा नहीं है. तुम्हारी फरमाइश है मलबार हिल में एक 3000 स्क्वायर फुट का फ्लैट हो तो वो पूरा करना उसका काम नहीं है, उसकी गारंटी नहीं है. हालांकि वो भी उसे को वही पूरा करता है क्योंकि उसकी कृपा हुई है बिना वो भी नहीं होने वाला है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है क्योंकि तुम्हारे लिए आवश्यक है प्राण रक्षा, जलपान की आवश्यकता है, भोजन पान की आवश्यकता है. ये सब तो विलासता के कारण है, योगक्षेम नहीं है ये. तो उसकी व्यवस्था तो वो करता ही है ना. तो इसीलिए कहा न तस्य कश्चित पतिरस्ति लोके, उसका कोई पति नहीं है, यानी वो सबका पालन पोषण करता है, उसका पालन पोषण करने की कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, अन्य द्वारा वो पोषित नहीं है, अन्य द्वारा वह पालित नहीं है, अन्य द्वारा वह रक्षित नहीं है, उसी द्वारा सब पालित है, उसी द्वारा वो सब पोषित हैं, उसी द्वारा सब रक्षित हैं, परंतु वह किसी द्वारा पालित पोषित और रक्षित नहीं है, वह अपनी रक्षा खुद करता है। हम एक बार मध्य प्रदेश के सरगुजा स्टेट गए थे, बहुत पहले की बात है, वहां के ग्रामीण लोग, एक महात्मा थे उनके कार्यक्रम में गए, तो वहां गांव के लोग आकर हमसे कहने लगे, महाराज यहां बड़ी समस्या है, ये दुर्गम क्षेत्र है, यहां मिशनरी लोगों का ज्यादा प्रभाव है, आप लोग साधु संत लोग आते नहीं हो, तो ये हिंदू धर्म के लिए यहां बहुत कष्ट हो रहा है। बोले क्या होता है भाई? बोले मिशनरी लोग ऐसे ऐसे ग्रामीण अनपढ़ व्यक्तियों को ऐसे भ्रमित करके धर्म परिवर्तन कर देते हैं, इसको रोकने के लिए आप लोगों को भी आगे आना चाहिए। तो हमको सुनाया कैसे वो लोग भ्रमित करते हैं अज्ञानियों को। कहते हैं कि बहुत से भगवान के मूर्तियों को ले जाते हैं, राम कृष्ण शिवा गणेश, और कहते हैं उनका जो क्रॉस है वो भी उनकी भगवान के प्रतीक मानते हैं वो, तो लकड़ी के गणेश शिवा आदि मूर्ति बनाते हैं और लोहे का क्रॉस बनाते हैं, उसके ऊपर जब स्टील पेंट कलर कर देते हैं तो सभी ऐसा लगता है कि एक ही कलर का दिखता है, देखने में लगता है सभी लोहे के हैं। उन ग्रामीण जनता को क्या पता है कि कौन लोहे का है और कौन लकड़ी का है, लकड़ी के ऊपर भी वही लोहे का कलर कर दिया, पेंट कर दिया, तो लोहा जैसे ही दिखेगा। और कहते हैं देखो ये भगवान सबकी रक्षा करता है, ये बात निश्चित है, लेकिन भगवान भी कौन किसकी रक्षा करता है और कौन सही भगवान है इसका परीक्षण करना चाहिए, तभी भगवान को मानना चाहिए। और जो भगवान खुद अपनी रक्षा न करे तो दूसरों की क्या रक्षा करेगा, और वही भगवान न सबकी रक्षा कर सकता है जो अपनी रक्षा करता है। देखो ये राम है, ये गणेश है, ये कृष्ण है, ये शिव है, ये हिंदुओं के देवता, और देखो ये हमारे देवता क्रॉस, एक ही प्रकार के देख रहे हो ना, देख लो ये सबको आग में डाल देते हैं, जो अपनी रक्षा कर सकता है वो सबकी रक्षा कर सकता है, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है वो किसी की भी रक्षा नहीं कर सकता है। तो उनके देखते देखते ही आग में डाल दिया, थोड़ी देर के बाद तो शिव भी राख हो गए, थोड़ी देर के बाद तो गणेश भी राख हो गए, कृष्ण भी राख हो गए, सब राख हो गए, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं अवशेष रहा, लेकिन वो लोहे का जो क्रॉस था वो जैसा गए वैसे बच गया। देख लो जो अपनी रक्षा कर सकता है वो सबकी रक्षा करता है, इसलिए असली देवता यही है, इसी की उपासना करो, इसी का भजन करो, इसी को अपने हृदय में धारण करो, वह तुम्हारी हर समय में तुम्हारी रक्षा करता है। उनको क्या पता कि वह शिव लकड़ी का था, तब उन लोगों के विश्वास हो गया कि हाँ ठीक कह रहे हैं आप, तो सब क्रिश्चियन हो गए। इस तरह धर्म परिवर्तन करते हैं। न तस्य कश्चित पतिरस्ति लोके, अरे भाई लकड़ी को जला सकते हो, परमात्मा को नहीं जला सकते भाई। न चेसिता नैव च तस्य लिंगम, वो सब पर शासन करता है, ईशन करता है, नियंत्रण करता है, लेकिन वो इतना स्वतंत्र है कि उसको कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है। लेकिन इसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई अनुशासक नहीं है, नियंत्रण करने वाला नहीं है, तो हिंदुओं का देवता परमात्मा स्वेच्छाचारी होगा? ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को अपने आप नियंत्रण कर सकता है। उसमें और हमारे में यही तो अंतर है, हम अपने आप को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। थोड़े से कोई प्रसंग हो गया तो तुरंत हमको गुस्सा आ जाता है और हम एक्शन में आ जाते हैं, उसका रिएक्शन ऐसा हो जाता है। हमारी फरमाइश के अनुसार पत्नी ने सब्जी नहीं बनाई तो गुस्सा आ जाता है, हमारे कहे अनुसार समय में उसने चाय बनाकर नहीं दी तो गुस्सा आ जाता है, कहे अनुसार हमारी अपेक्षा अनुसार नौकर ने काम नहीं किया गुस्सा आ जाता है। हम अपने पर ही नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए शायद हमको नियंत्रण करने वाला कोई और की आवश्यकता पड़ गई, और हम यदि खुद अपने को नियंत्रण कर सकते तो हमको नियंत्रण करने के दूसरे की आवश्यकता ही नहीं थी। अभी भी यही है। जेल क्यों बनाया जाता है, कानून क्यों बनाया जाता है, इसलिए कि अपने आप को जो नियंत्रण कर न सके उनको ही इसके द्वारा नियंत्रित किया जाए। नचे सीता, वो अपने आप को नियंत्रण कर सकता है, स्वेच्छाचारी नहीं है, इसलिए तो उसका नियामक कोई और नहीं है। परम स्वतंत्र तुलसीदास जी ने कहा है, परम स्वतंत्र सिर पर नहीं कोई, इसी मंत्र की व्याख्या की है तुलसीदास जी ने, परम स्वतंत्र सिर पर नहीं कोई, उसका सिर में कोई अंकुश करने वाला नहीं है भाई, वो परम स्वतंत्र है। स्वतंत्र है तो इसका मतलब वो व्यभिचार करता हो, उठपटांग करता हो, ऐसा भी नहीं है, अपने ही बनाया हुआ नियम अनुसार वह पालन करता है। हमारे नेता तो अपने ही बनाए कानून को अपने आप ही तोड़ते हैं, लेकिन वो पहले वो कानून बनाता है, उसके बाद उसके अनुसार वो स्वयं अपने आप नियंत्रित होता है। अध्यात्म रामायण में लिखा है, जब भगवान राम 14 वर्ष पिता की आज्ञा से बन जाने के लिए तैयार हुए तो वह अपनी सब माताओं को दर्शन किया, आशीर्वाद लिया, भाइयों से मिला, मिलने के बाद अपनी पत्नी के पास गए और कहा कि अब मैं जा रहा हूं पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए, तुम बैठो और गृहस्थ धर्म के अनुसार तुम अपने सास ससुर और सबकी सेवा शुश्रूषा करो, तुम यहीं रहो, पिता ने तुम्हें जाने के लिए कहा नहीं, मुझे जाने के लिए कहा है, इसलिए मैं जाता हूं। तो सीता ने कहा कि तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। राम ने बहुत समझाया, तुम नहीं जा सकती हो, बहुत कष्ट है, वहां जंगल है, जानवर है, बहुत हिंसक जानवर है, असुर लोग हैं, प्रेत भूत आदि का साम्राज्य है, और रास्ता ठीक नहीं है, कांटा और कंकड़ बहुत ज्यादा है, और जंगलों में घूमना है और कोई व्यवस्था नहीं है, पेड़ के नीचे सोना पड़ सकता है, गुफा में सोना पड़ सकता है, खुले आकाश में सोना पड़ सकता है, और वल्कल वस्त्र धारण करके चलना है, कोई कपड़े भी नहीं है, तो तुम जाने की बात नहीं करो, तुम यहीं रहो, हम अकेले चले जाएंगे, पिताजी की आज्ञा 14 वर्ष की बात है, वो पूरा करके आ जाएंगे। तो सीता ने कहा कि राम, तुमने रामायण पढ़ी है कि नहीं? राम ने कहा कि रामायण तो पढ़ी है हमने। कौन कौन से रामायण पढ़ी? बोले प्राय सभी पढ़ी है, क्योंकि योग वासिष्ठ महारामायण जंगल जाने से पहले वशिष्ठ जी ने पूरा पढ़ाया है ना। हम जब वेदांत श्रवण के लिए लोगों को कहते हैं तो बोले अभी तो बूढ़े हुए ही नहीं है, अभी क्या सुनना है महाराज, जब बूढ़े होंगे तब आएंगे। अरे बाबा, भगवान राम तो बूढ़े नहीं, बचपन में सुने हैं योग वासिष्ठ, वेदांत तो पहले ही सुना है राम ने। तो बोले हमने सब रामायण पढ़ी है। तो बोले मुझे ये बताओ कि कौन से रामायण में ये लिखा है कि राम सीता के बिना अकेले जंगल गए? ये किसी भी एक रामायण में लिखी हो तो हम जाने का आग्रह नहीं करेंगे। सीता जी ने कहा राम से, यदि किसी भी रामायण में राम अकेले 14 वर्ष के लिए जंगल चले गए, सीता अयोध्या में रही, ऐसा कहीं लिखा होगा तो फिर हम जाने के आग्रह नहीं करेंगे। किसी रामायण में लिखा है ऐसा? राम ने कहा ऐसा तो नहीं। क्या लिखा है? हर रामायण में यही लिखा है कि सीता के सहित 14 वर्ष जंगल में चले गए। तो बोले अरे तब शास्त्र ने जब लिख दिया है तो तुम उस मर्यादा को क्यों तोड़ रहे हो? तो शास्त्र के अनुसार कर्म करो तुम भाई। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो। अर्जुन को कहा भगवान श्री कृष्ण ने, हे अर्जुन तुम्हारे लिए क्या करना है क्या नहीं करना है हम भी नहीं कहेंगे, कोई भी नहीं कहेगा, शास्त्र जो कहता है वो करो। शास्त्र ही प्रमाण है। जब सीता ने, अध्यात्म रामायण का प्रसंग है ये, जब सीता ने ये कहा कि जब शास्त्र प्रमाण है तो शास्त्र के उल्लंघन क्यों करने जा रहे हो, तो राम ने कहा कि हाँ ठीक कह रही हो तुम, हमको शास्त्र के अनुसार ही सब कर्म करना है, क्योंकि सभी रामायण में ये लिखा है कि सीता के सही 14 वर्ष जंगल गए, तो तुम भी चलो कोई बात नहीं, अब शास्त्र को ठीक करना है, अब हम आग्रह नहीं करेंगे तुम मत चलो, क्योंकि शास्त्र हमारे द्वारा रक्षा करनी है। तो परम स्वतंत्र सिर पर नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपनी मर्जी से सब कर लेगा। न चे सीता नैव च तस्य लिंगम। और आश्चर्य की बात है वह उसका कोई लिंग नहीं है। लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है आप लोगों को मालूम होना चाहिए, पहचानक, ज्ञापक, बोधक। लिंग शब्द का अर्थ होता है बोधक, बोध कराने वाला, पहचान कराने वाला, ज्ञात कराने वाला। अज्ञात को ज्ञात कराने वाला वस्तु का नाम लिंग है। इसलिए न्याय शास्त्रों में धूम को लिंग कहते हैं। अग्नि नहीं दिख रही है, अग्नि की आवश्यकता थी, अग्नि नहीं दिख रही है, लेकिन अचानक धुआं दिखाई पड़ा तो निश्चय हो गया कि अग्नि है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र मन्नी सहचर्य नियमो व्याप्ति। क्योंकि उन्होंने जहां भी अग्नि जलाई थी वहां धुआं उड़ता हुआ देखा था, अब व्याप्ति स्मरण हुआ आया उनको। व्याप्ति स्मरण होते ही उन्होंने ये धुआं है इसका मतलब वहां अग्नि है, ये निश्चय होकर अग्नि का ज्ञान कराया। किसने? धुएं ने अग्नि का ज्ञान कराया। दिखते हुए धुएं के द्वारा न दिखता हुआ अग्नि का निश्चय करना, तो इस अर्थ में धुएं को लिंग कहते हैं। जैसे जब लंका में गए विभीषण, तो वहां कोई सज्जन सत्पुरुष का वास हो ताकि वह मैं एक रात विश्राम करूं। दुष्टों का क्या साधु जाए? और लंका में सब चारों तरफ दुष्ट है, असुर असुर, राक्षसी राक्षसी। कोई तो एक राम का भक्त होना चाहिए, कोई तो एक सज्जन होना चाहिए। सारे लंका में घूम रहे हैं हनुमान जी, कहीं सज्जन का घर नहीं दिख रहा है। लेकिन दूर आंगन में एक तुलसी का मठ, तुलसी का क्यारा बना के रखा था, तुलसी का पौधा था, और एक झंडा राम का नाम लिखा हुआ झंडा था। तो उसको देखकर हनुमान को ये पक्का हो गया कि ये राम भक्त का घर है। तो तुलसी का जो पौधा है आंगन में, ये क्या हो गया? लिंग हो गया। किसका? राम भक्त का लिंग हो गया ये। उसने राम भक्त है ये बोध कराया। इसलिए अनुमान के लिए लिंग की आवश्यकता पड़ती है, उसी को हेतु कहते हैं। यहां लिंग शब्द का प्रयोग किया लेकिन उसी को हेतु कहते हैं। न तस्य लिंगम, क्योंकि वह परमात्मा अनुभव गम्य है, अनुमान गम्य नहीं है। अनुभव का विषय है, अनुमान का विषय नहीं है। मान शब्द का अर्थ होता है प्रमा, मा प्रमा, अनु पहले किसी वस्तु का ज्ञान होता है उसके बाद दूसरे वस्तु का ज्ञान होवे तो उसको कहते हैं अनुमान। जैसे रात को सोए हुए थे, बारिश का कोई लक्षण नहीं था और अचानक रात को बारिश हुई थी, हम सोए थे, हमको पता ही नहीं चला। सुबह जब देखते हैं तो सब पानी गड्ढा भरा हुआ है, सड़कों में चारों तरफ भरा हुआ जो पानी है उसको देखकर पश्चात दूसरा मान होता है, दूसरा ज्ञान होता है कि रात बारिश हुई, बारिश का ज्ञान हुआ, पानी को देखकर बारिश का ज्ञान हुआ, जब बादल को देखकर बारिश का अनुमान होता है, अनुमान। उसके लिए लिंग की आवश्यकता माने हेतु की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा अनुमान का भी, जैसे कि न्याय दर्शन 90 न्याय आदि, वो लोग ईश्वर को अनुमान से सिद्ध करते हैं। जैसे कोई कुम्हार के बिना घड़ा नहीं बनता, जुलाहा के बिना कपड़ा नहीं बनता, ज्वेलरी के बिना आभूषण नहीं बनते, तो एक छोटे छोटे घट वस्त्र और आभूषण बनाने के लिए भी कोई न कोई उसका निर्माता की आवश्यकता पड़ती है। अपने आप ज्वेलरी सुन में से, सुवर्ण से ज्वेलरी नहीं, आभूषण नहीं बनते, अपने आप धागे में से कपड़ा नहीं बनता, अपने आप मिट्टी से घड़ा नहीं बनता, कोई न कोई बनाने वाला होता है तब बनता है। इसी प्रकार से यह विश्व ब्रह्मांड को भी कोई न कोई बनाने वाला है, उसके बिना यह जगत बना नहीं है। इसलिए ईश्वर है, किस लिए बोले जगत कर्ता के रूप में, इसको कहते हैं अनुमान। संख्या माने न्याय वैशेषिक आदि ईश्वर को अनुमान से सिद्ध करते हैं, लेकिन वेदांत ईश्वर को अनुमान से सिद्ध नहीं करता है, वेदांत ईश्वर को अनुभव सिद्ध करता है। मैं हूं यही प्रमाण है कि ईश्वर है, यदि ईश्वर नहीं होता तो मैं नहीं होता, मैं हूं, मैं के रूप में ईश्वर सिद्ध होता है, अहम के रूप में ईश्वर सिद्ध होता है। लिंग शब्द का दूसरा अर्थ होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को वेदांत दर्शन में लिंग शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर के अंतर्गत 17 अवयव हैं, ये आप लोगों को कई बार सुनाया गया है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि। चित्त अहंकार को जोड़ोगे तो 19 कर लो। ये 17 तत्वों से बना हुआ जो है उसको लिंग शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर का ही काला माने दूसरा नाम है लिंग शरीर। उसको लिंग शरीर क्यों कहते हैं? लीनम अर्थम अव्यक्तम, लीनम अर्थम बोधयति गमयति इति लिंग। जो सामान्य है, लीन है, व्यक्त नहीं हो रहा है, उस अव्यक्त तत्व को जिसके माध्यम से व्यक्त किया जाता है और निश्चय किया जाता है, उसी को लिंग। इस हॉल में हम लोग सब चले जाएंगे, कोई भी यहां नहीं रहेगा, कर्मचारी भी नहीं रहेंगे, तब फिर इस हॉल में आत्मा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो किसी को बाहर से दरवाजा खोल के देखेगा तो दिखाई पड़ेगा वो आत्मा है, चेतना है, अस्तित्व है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? बोले वस्तु होता हुआ भी दिखाई इसलिए नहीं पड़ता कि उसको दिखाई पड़ने के लिए जो उपकरण की आवश्यकता है वो उपकरण नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है। तो सामान्य जो चेतना सर्वव्यापक है उसको प्रतीत कराने का माध्यम है सूक्ष्म शरीर, और जहां सूक्ष्म शरीर है वहां सामान्य आत्मा व्यक्त होता है, विशेष रूप में प्रतीत होने लगता है। जहां सूक्ष्म शरीर नहीं है वहां सामान्य आत्मा व्यक्त नहीं होता। इसलिए हमने कभी कहा था कि मुर्दे में भी आत्मा रहता है, लेकिन वह सामान्य आत्मा है, वहां विशेष आत्मा नहीं है। वहां रहने वाले उस सामान्य आत्मा को सूक्ष्म शरीर के प्रवेश से वह विशेष रूप में दिखता है, सूक्ष्म शरीर के निकल जाने के बाद वह विशेष रूप में निकल जाता है, विशेष रूप बाधित हो जाता है, और वह सूक्ष्म शरीर जहां जहां भी रहेगा वहां विशेष रूप में प्रतीत होगा, सूक्ष्म शरीर जहां नहीं रहेगा वहां सामान्य रूप में रहेगा। जैसे इस हॉल में शब्द रेडियो के शब्द है कि नहीं, टीवी के शब्द है कि नहीं, टीवी के चित्र है कि नहीं, टीवी में जो दिखने वाला चित्र है वो इसके अंदर है? सारा टीवी में दिखने वाला जो चित्र है, नाच गान, स्त्री पुरुष, गाय भैंस, पानी जो कुछ भी है वो सब यहां है, हॉल में है, लेकिन दिखता क्यों नहीं है? तो बोले ये अव्यक्त रूप में है, वेव के रूप में, तरंग के रूप में है, उसको व्यक्त करने का यंत्र यहां ले आओ तो यही दिखाई पड़ेगा। ये देख लो तुम्हारी जो टीवी है उसको यहां ले आके रख लो और ऑन कर लो, वो चित्र, वो टीवी के अंदर के चित्र यहां दिखेंगे कि आकाश में तरंग के रूप में विद्यमान चित्र दिखेंगे उस टीवी में? जो विद्युतीय तरंग में जो चित्र प्रवाहित हो रहे हैं वो तरंगों को टीवी की विशेषता है कि उसको पकड़कर स्क्रीन में दिखा सकता है, उसकी योग्यता है। लेकिन रेडियो को लाओगे तो शब्द तो पकड़ेगा, चित्र नहीं पकड़ेगा। टीवी लाओगे तो चित्र भी पकड़ लेगा, शब्द भी पकड़ लेगा। और घड़ी लाओगे तो न शब्द पकड़ेगा न चित्र पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा घड़ी? क्योंकि घड़ी में शब्द को और चित्र को पकड़ने की कैपेसिटी, योग्यता नहीं, क्षमता नहीं है। रेडियो में केवल शब्द पकड़ने की क्षमता है, टीवी में शब्द और चित्र पकड़ने की क्षमता है। इसी तरह जैसे चित्र और शब्द सर्वव्यापक होता हुआ भी तत्त्व उसको अभिव्यक्त करने के यंत्र ही उसको अभिव्यक्त कर सकते और नहीं कर सकते, इस प्रकार से सर्वव्यापक चैतन्य को अभिव्यक्त करने के माध्यम है लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर। उसका सूक्ष्म शरीर नहीं है। न चेषिता नैव च तस्य लिंगम स कारणम करणाधिपाधिपो, वो सबका कारण है और वो करण उसके पास नहीं है, वो करणों का अधिपति है। करण माने इंद्रियां, अंतकरण वहीकरण, अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, वहीकरण ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, इस प्रकार से इनको वहीकरण कहते हैं। उसकी कोई अंतकरण भी नहीं है, वहीकरण भी है, क्योंकि लिंग शरीर नहीं है तो करण नहीं है। न चास्य कश्चित् जनिता चाधिपाः, उसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं, इसलिए वो अजात है। उसके शासन करने वाला कोई नहीं, वो अधिपा है, सारे के मालिक है वही। इस प्रकार से श्रुति उस परमात्मा का निर्देशन करती है और आगे क्या कहेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।